surgió me.
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम बातचीत करेंगे माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के विजेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन। नीलू जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
जी नमस्कार।
नीलू जी, सबसे पहले क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है?
देखिए, इसके शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो विकसित भारत जो बनना है 2047 तक, जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसके हिसाब से युवाओं को तैयार करना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। क्योंकि अभी जो यूथ हैं, यूथ ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे, उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पे बजट जो है, वो बजट में हम देखते हैं कि प्री बजट कंसल्टेशन बहुत होता है, अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हो, चाहे वो लघु उद्योग मझोल उद्योग क्षेत्र के हो और दो जगत के लोग हों, सब लोगों से अलग अलग एक कंसल्टेशन होता है, उसके आधार पर बजट बनता है। यूथ की भागीदारी इसमें कहीं होती नहीं है। ये जो क्वेस्ट शुरू किया गया, इसमें ये हुआ कि पूरे देश के लोग जो हैं, खासतौर पर यूथ जो हैं, वो बजट को सुने, बजट में क्या क्या चीजें जो हैं वो ठीक हुई हैं, क्या और होना चाहिए विकसित भारत के निर्माण के लिए। जो अलग अलग फील्ड हैं, जहां तक मुझे ध्यान है कि इसमें 9 फील्ड चुने गए हैं, जैसे कि विकसित कृषि होगा, युवाओं को रोजगार का मामला है, नई टेक्नोलॉजी का मामला है, तो इस अलग अलग फील्ड में यूथ को जोड़ के और बजट कैसा होना चाहिए, यूथ के हिसाब से किस ढंग से इन क्षेत्रों में बनना चाहिए, किन चीजों पे जोर होना चाहिए, इस पे काफी लंबी चर्चा होती है। लगभग 12 लाख यूथ ने इसमें भाग लिया है, 48,000 उसमें प्रेजेंटेशन आए हैं, उन्होंने लेख लिखा है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों में होना चाहिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि बजट और बजट के हिसाब से जो विकसित भारत के निर्माण में जो बजट की भूमिका है, हर सालाना बजट आता है, वो कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूथ के सेंटिमेंट है, यूथ की जो सोच है, यूथ कैसा चाहता है विकसित भारत, ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये सब के सब उसमें आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये।
नीलू जी, ये जो आज का युवा है, जिसे बोलचाल में जेंजी भी कहते हैं, कि उसकी दिलचस्पी इन चीजों में कम हो रही थी, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं सचमुच बहुत उत्साहजनक हैं।
नहीं, निश्चित रूप से। दरअसल यूथ के बारे में ये सोचा जाता था कि यूथ जो है, या तो वो पॉलिटिक्स में कॉलेज में आ जाता था कि पॉलिटिकल चीजों में हो, इलेक्शन लड़े वो लड़े, या सिर्फ पढ़ाई लिखाई करे और एक नौकरी वो ले ले, तो यही उसका एक कैरियर जो था वो महत्वपूर्ण था। देश के निर्माण में यूथ की भूमिका, यूथ का सोच, युवा क्या चाहता है, कैसे देश बने, अगर आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल यूथ में बहुत ज्यादा होता है, नई नई चीजें जो आ रही हैं उसके प्रति उनके विचार होते हैं। अभी तक यूथ को इस ढंग से एंगेज करने का कहीं कोई कार्यक्रम नहीं था, और ये एक कार्यक्रम नहीं है। अगर माई भारत का आप देखेंगे तो जो विवेकानंद की जयंती पे जो हम एक युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को, उसको भी एक बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है यूथ की भागीदारी को लेकर के, और पूरे देश में प्रतियोगिताएं होती हैं, क्विज होता है, उसे चुन के 3,000 यूथ आते हैं, वो अलग अलग फील्ड में कैसा देश हो क्या हो उसका प्रेजेंटेशन देते हैं। माई भारत जो है, बजट क्वेस्ट जो है, वो उसी का एक कह सकते हैं कि अगली कड़ी है, अगला कदम है कि बजट अगर हो रहा है तो बजट में यूथ के लिए क्या क्या चीजें हैं, सही हैं जो भी है अलग अलग क्षेत्रों में, और यूथ क्या चाहता है। क्योंकि देखिए, देश जब विकसित होगा तो 47 में आज जो यूथ है, 24 साल का, 20 साल का, 25 साल का यूथ है, 20 साल के बाद तो विकसित भारत को असली रूप में वही बनाएगा, उसी की ऊर्जा, उसी की सोच वही है जो यूथ, मतलब विकसित भारत का निर्माण करेगा। तो जिसको विकसित भारत का निर्माण करना है उसकी अगर भागीदारी हो जाए, जो महत्वपूर्ण बात है कि नई टेक्नोलॉजी जो तेजी से दुनिया बदल रही है और तेजी से समाज बदल रहा है, जो एक परिवर्तन की गति बहुत तेज है, तो पुरानी पीढ़ी के लोग उस गति के साथ शायद अपने आप का सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। वो पुरानी जो बजट की चीजें थी, पुराने जो सोच थी, पुराने ख्याल थे, उसी के हिसाब से बजट को देखते हैं। जबकि बजट अब बिल्कुल अलग हो गया है। अगर आप 10 साल पहले की बजट की बात आप सोचेंगे तो आपको लगेगा, ध्यान आएगा कि बजट में लोग देखते थे क्या चीजें सस्ती हुई क्या महंगी हुई। जो बड़ी घोषणाएं होती थी, जो सरकार के फैसले होते थे, वो बजट तक इंतजार किया जाता था और बजट में उसकी घोषणा होती थी कि सरकार ने ये नीतिगत फैसला लिया है, सरकार ये किया
जी
है।
अब वो पूरी तरह बदल गया है।
बदल गया है, अब जब जरूरत है तब सरकार फैसला लेती है और बजट इन चीजों से बाहर निकल के, और बाकी काम भी हुए हैं कि बजट पहले की पहले 28 फरवरी को पेश होता था, जब वो पास होता था मई तक जाते जाते तो पहली तिमाही जो है वो वित्तीय वर्ष का अप्रैल मई और जून निकल चुका होता था, तो 3 महीने तो ऐसे ही गायब हो गया वो। अब उन्होंने 1 फरवरी कर दिया, इस बार रविवार था, उसके बाद भी उसका हुआ। इसका मतलब कि बजट की जो पूरी प्रक्रिया है और बजट में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सब लोग हों, सिर्फ परंपरागत रूप में कि भाई कुछ किसानों से मिल लिए, कुछ उद्योगपतियों से मिल लिए, कुछ उद्योग संघों से मुलाकात कर ली, उनके जो चीजें हैं सुझाव हैं वो ले लिए, तो अपनी अपनी मांगे रखते हैं कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, लेकिन सचमुच में विकसित भारत, क्योंकि यूथ का किसी से कोई मतलब नहीं है, वो देश से मतलब है, देश की समस्याओं के बारे में क्या सोचता है, देश किन आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, कैसे उसे बाहर निकल सकता है, अलग अलग क्षेत्र के अलग चुनौतियों के बारे में अलग अलग इलाकों के यूथ की अलग भागीदारी है। और आप देखेंगे इसमें कि वो किसी एक फील्ड का नहीं है, मतलब किसी एक क्षेत्र का यूथ नहीं है, तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश के हर राज्य के यूथ जो है इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यूथ की भागीदारी अगर प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित की है इस मामले में तो ये एक देश के लिए अच्छा है, क्योंकि यूथ अगर पार्टिसिपेट करता है, उसको लगता है कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोच रहा हूं, उससे के हिसाब से बजट आ रहा है, उसी हिसाब से नीतियां बन रही हैं, तो वो अपनी भागीदारी अब सुनिश्चित करता है। तो जो जेंजी वाला जो एक सोच है यूथ को लेकर के कि वो विध्वंसक होता है, वो नियमों को नहीं मानता है, वो तोड़फोड़ करता है, वो स्थापित जो चीजें हैं उसको बदलने में भरोसा करता है, वो नहीं है। वो बदलना जरूरी है, लेकिन बदलने की प्रक्रिया एक सकारात्मक भी होती है, एक विध्वंसक भी होती है। तो सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल जो है इसमें, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है
जी। और हम फिर से आए माई भारत बजट क्वेस्ट पे, तो इस प्रतियोगिता की प्रक्रिया क्या रही, मतलब क्विज से लेकर निबंध और फिर अंत में अब प्रधानमंत्री से संवाद शुरू हो रहा है, तो इस पूरे सफर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए, इसमें शुरुआत जो होती है वो तो क्विज से होती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सब अपना आप भागीदारी लेते हैं, उस भागीदारी में जो चुने जाते हैं उनको कहा जाता है कि फिर आप निबंध लिखिए, उसमें लेख लिखिए, जो विषय आपने चुना है, अलग अलग विषय जो होते हैं अलग अलग फील्ड के, तो आप चुन के उस पे विषय लिखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, बजट में क्या चीज है, क्या और इसमें सुधार हो सकता है, अगले बजट में इसको हम आगे कैसे देखेंगे। तो आपने देखा कि 12 लाख यूथ ने भागीदारी की क्विज में, सब मतलब पूरी प्रक्रिया में शुरुआत में भागीदारी ली, और उसमें 47,000 जो चुने गए उन्होंने निबंध लिखे। अच्छा, उस निबंध में से भी हर स्टेट से जो बेहतर निबंध वाले लोग होंगे उनको अलग अलग चुना जाएगा, और वो जो चुन के फिर ऊपर जो लोग आते हैं उनसे प्रधानमंत्री का सीधा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो उसमें कुछ नया आइडिया होता है, मतलब 47,000 में से जो चुने जा रहे हैं तो उसमें नए आइडिया है, नई चीजें हैं, नई सोच है जो यूथ अपने आप को दे रहा है कि जिस फील्ड में वो लिख रहा है वो फील्ड कैसा होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री के इंटरेक्शन से वो चीजें निकलती है कि आपकी जो ये सोच है वो कहां से आई, और प्रधानमंत्री भी उसमें डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ सरकार उसके बारे में क्या क्या सोच रही है। तो आप देखेंगे क्वेस्ट जो है कुछ से शुरू होकर के और सीधे सरकार के टॉप लेवल पे जो इंटरेक्शन है, मतलब प्रधानमंत्री जो टॉप हैं वो, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है और प्रधानमंत्री खुद समझते हैं कि यूथ के दरअसल जो लिख रहा है, जो बता रहा है, वो कितना सही है, कैसे है, और उसको लागू होना सुनिश्चित होता है अगर प्रधानमंत्री उस बात से सहमत हैं तो।
और अब जब इसके विजेताओं को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत का अवसर मिल रहा है, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि इस संवाद से क्या कुछ निकल कर आएगा?
देखिए, संवाद से हमेशा अच्छी चीजें निकलती हैं। जो समस्याओं का समाधान जो है वो संवाद ही है, और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत संवाद से ही होती है। अगर प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं इन युवाओं से, तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर युवा कुछ सोच के एक लेख लिख रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री संवाद में उस लेख के बारे में किस सोच के साथ यूथ ने लिखा है उसके बारे में करेंगे। तो ये जो यूथ है जो मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, ये कुछ और ज्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी से होंगे और बाकी जो देश का यूथ है जो इन लोगों से सीख करके आगे भागीदारी बढ़ेगी। जो बजट है, सिर्फ कहा जाता था कि जो फाइनेंस के जो लोग हैं, वित्तीय जो समझ वाले लोग हैं, उन्हीं की चीज है, वही सब कुछ जानते हैं बजट में कि कितना कहां जाया, कैसा खर्च हुआ, किस किस चीज में जोड़ है नहीं है। अब यूथ जो है और सामान्य यूथ जो है वो अगर इसमें सीधे सीधे भागीदारी करता है तो बजट की पूरी प्रक्रिया, बजट लागू करना, वो किस रूप में आए और अगले साल जो बजट हो वो इन चीजों को कैसे उसमें लाया जाए, ये बहुत सारी चीजें उसमें अपने आप में समाहित हो जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जी, जैसा आपने बताया कि बजट की प्रक्रिया में भागीदारी, सीधे प्रत्यक्ष भागीदारी अगर युवाओं की हो रही है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जैसा हम जानते हैं कि बजट की प्रक्रिया में पहले भी फीडबैक तो लिया जाता था लेकिन वो एक पूरे सरकारी तंत्र से आता था कि विभागों से पूछा जाता था कि ठीक है आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, या ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक संघों से पूछ लेते थे। इससे अधिक कोई जनता की सीधी भागीदारी किसी बजट में नहीं होती थी, लेकिन ये जो पहल है, अगर हम देखें ये जो क्वेस्ट है, इससे बहुत सीधी भागीदारी आ रही है। और अक्सर जो कहा जाता है कि बजट बहुत तकनीकी और जटिल विषय है, जो अभी आप बता रहे थे कि फाइनेंस वालों की चीज है, ऐसा है, तो ऐसे में अब क्या इस तरह के पहल से, अब इसमें जो युवा अभी शामिल हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा भी क्या एक जो अभी हमारी अगली पीढ़ी है जो अभी तैयार हो रही है, उन्हें बजट को समझने और उससे जुड़ने में सहायता मिलेगी?
ये एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि ये जो बजट है ना, जो आंकड़ों का जो गणित है, प्रधानमंत्री उस गणित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट हुआ, कहां पैसे गए, किसको नहीं दिया, किसको कम मिला जा रहा, इस पे नहीं जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा क्वेस्ट है वो ये है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो बजट में किन चीजों पर जोर होना चाहिए, क्या क्या चीजें मिसिंग है, कहां कहां हम और ज्यादा इस बजट में हम प्राविधान कर सकते हैं, यूथ उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि बजट में आज बजट जो है वो आज का है, लेकिन यही एक एक साल का बजट अगर आप देखेंगे तो 20 साल में यही बजट जो है 20 साल 25 साल बाद वो विकसित भारत का निर्माण करेगा। पैसे यहीं से आते हैं, बजट से ही लोकेशन से आएंगे। तो अभी से यूथ क्या सोच रहा है विकसित भारत के लिए, ये एलोकेशन के लिए नहीं है कि स्वास्थ्य को कितना दो, इसको कितना दो, उसको कितना दो, वो नहीं है वो, कि किस चीजों पे हमें देना है। जो अब मान लीजिए कि इनोवेशन फंड 1,00,000 करोड़ का है, तो इनोवेशन फंड जो है इनोवेशन में कौन जाएगा, यूथ जाएगा। बाकी इस ढंग की जो चीजें, क्वांटम मिशन शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन मिशन शुरू हो रहा है, तमाम चीजें, ऐसे नए नए फील्ड और भी आ रहे हैं। खेती के बारे में है कि खेती अभी भी परंपरागत रूप में हो रही है और अगर विकसित कृषि करना है देश में तो यूथ बताएं कि कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या सरकार करे, कहां प्रावधान करे, बजट में उसके लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो ये बजट को एक कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो एक काम होता था उससे निकाल के यूथ से नए इनोवेटिव आइडिया लेकर के और बजट को विकसित भारत के निर्माण में बजट का इस्तेमाल कैसे हो, एक बिल्कुल नई चीज है।
जैसे आपने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी इसको जोड़ा जा रहा है, तो और युवाओं की भागीदारी इस दृष्टि को आगे बढ़ाने में, इस विजन को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था कि श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि विकसित भारत 47 में जब बनेगा तो आज का जो 25 साल का युवा है वही तो उस वक्त विकसित भारत में रहेगा। जो आज 50-60 साल का हो गया है वो तो रिटायर हो जाएगा, 25 साल बाद बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो वो जो भूमिका है, वो जिसके लिए विकसित भारत बनना है वो तय करे कि हमें किस ढंग का विकसित भारत चाहिए। क्योंकि अभी है क्या कि विकसित भारत में लोग जो देखते हैं, जो सामान्य रूप में जो अर्थशास्त्री हैं, वो पर कैपिटा इनकम ही देखते हैं कि देश का पर कैपिटा इनकम जिस दिन $10,000 से ऊपर हो गया उस दिन देश विकसित हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। पर कैपिटा इनकम का विकास होने से कोई मतलब नहीं, एक पैमाना है वो, लेकिन कोई भी क्षेत्र पीछे ना रहे, कोई भी ऐसा यूथ हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बाकी लोग हो, वो किसी भी फील्ड में भारत पीछे न रहे, ये सुनिश्चित करना है और सबका जीवन शैली जो है एक बेहतर हो जाए। तो ये जो चीजें हैं वो सबको समाहित करने वाली चीज जो है ये है, और इसमें यूथ की भागीदारी आ रही है।
नीलू रंजन जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में